नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। तो संपूर्ण असुरों का वध होने के पश्चात देवी की बड़ी स्तुति गाई गई, देवताओं ने गाई। तो ये बात मार्कंडेय जी सुना रहे हैं और मार्कंडेय जी बता रहे हैं मेधा ऋषि की और राजा की, सुतपा राजा और उसी और वे वैश्य, दोनों की एक जैसी हालत थी। उस समय में ये प्रसंग चल रहा। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि इस देवी ने शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्यों का भी संसार की रक्षा के लिए वध किया था, वो भी मैं तुमको सुनाना चाहता हूं, बड़े प्रेम से सुनो। वो सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। कितने भावना से बोल रहे हैं, वो मेरे मुंह से सुनो और मैं भी तुमको उसका यथावत वर्णन करूंगा। रक्षणाय च लोकानां देवानां उपकारिणी तत्क्षिणस्व मयाख्यातं यथावत कथयामि ते। तो वो बता रहे हैं, पुरा शुंभ निशुभ्याम निशुंभाभ्याम असुराभ्याम शचीपते त्रैलोक्यम यज्ञ भागाश्च हृता मद बलाश्रयात। तो ऋषि बोलते हैं कि शुंभ और निशुंभ नाम के दो असुर थे किसी समय में। उन्होंने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र का जो राज्य था, त्रिलोकी का राज्य, वो छीन लिया और देवताओं को जो यज्ञ का भाग मिलता था वो भी छीन लिया, बलपूर्वक छीन लिया, इतना बल था उसके पास। घमंड में आकर, बल का घमंड। वे शुंभ और निशुंभ सूर्य का, चंद्रमा का, कुबेर का, वरुण का, पवन का, अग्नि का, सब देवताओं का अधिकार स्वयं काम में लेने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन्होंने सब देवताओं को अपमानित किया, राज्य भ्रष्ट किया, पराजित किया, अधिकारहीन किया और स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं ने क्या किया कि बिचारे इधर उधर कहां शरण ले रहे। तो वे देवता देवी को याद किए, देवी का स्मरण किया, क्योंकि उन्होंने विचार किया था कि जगदम्बा देवी ने हमको पहले भी कहा था कि भाई तुम्हारे पर विपत्ति आए तो मेरे को याद कर लेना। तो वे कहां जाए, हिमालय पर गए और वहां जाकर उन्होंने भगवान विष्णु की जो माया थी उसकी स्तुति करी। प्राय करके आप लोग यही स्तुति में पढ़ते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु तृषा रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण, वो देवी भूख के रूप में है, निद्रा के रूप में है, बुद्धि के रूप में है, शक्ति के रूप में है, माता के रूप में है, दया के रूप में है, और भ्रांति रूपेण संस्थिता, सब कुछ वही है। ऐसे देवी का खूब स्तवन किया। तब उसके बाद देवी के मन में ये विचार आया कि बेचारे विपदग्रस्त है देवता लोग, और हमको इन्होंने याद किया है, उद्दंड देवताओं से ये सताए गए हैं, तो जगदम्बा हमारा जल्दी से जल्दी ये कष्ट दूर करे, ऐसी ऐसी बातें कहने लगे, तो वह जगदम्बा देवी उस समय, जगदम्बा कह दो, पार्वती कह दो, भवानी कह दो, दुर्गा कह दो, ये यहां कोई भेद नहीं है। वैसे भवानी कहने से भगवान शंकर को मानने वाले उनमें आ जाए, दुर्गा है ये वैष्णवों की देवी है, भवानी है ये शैवों की देवी है, ये अपने लोगों का है, वहां देवी तो एक की एक है। तो ऐसी जब ये देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती जी गंगा में स्नान करने के लिए आई, और वहां देवता थे ही हिमालय के, वहां प्रकट हो गई। भवानी ने थोड़ा कौतूहल करके पूछा, देवताओं आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो भाई? तो देवता बोले कि जो हमारी आर्थ भावना को सुनने वाली है उनकी करते हैं। तो पार्वती जी खुश हो गई, परंतु पार्वती जी ने परीक्षा के लिए पूछा, देवताओं ने कहा कि जो हमारी इस बात को सुने हम तो उसी के लिए ही स्तुति कर रहे हैं। तब पार्वती के शरीर से एक देवी अलग से प्रकट हुई और वो बोली, तुम लोग शुंभ नाम के दैत्य से पराजित हो गए, तिरस्कृत हो गए, निशुंभ ने भी तुम्हारा बड़ा अपमान किया है, तो यहां एकत्रित हुए देवता मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती जी के शरीर से निकली हुई इस अंबिका का जब प्रादुर्भाव हुआ, तब ये समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के प्रकट होने से पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया, इसलिए हिमालय पर रहने वाली ये देवी कालिका के नाम से विख्यात हो गई। तो उस समय शुंभ और निशुंभ के सेवक थे चंड मुंड, वो वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा, और उन्होंने तत्काल जाकर शुंभ के पास निवेदन किया, महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य प्रभा से, दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है, ऐसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा, हे असुरेश्वर आप पता लगाओ ये देवी कौन है, और हमारे विचार से तो आपको उस देवी को पकड़ लेना चाहिए, स्त्रियों में तो वो रत्न है, वो सर्वांग सुंदर है, सब दिशाओं में उसका प्रभाव, उसका सौरभ माने उसके शरीर से बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है, वो हिमालय पर है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हे शुंभ महाराज, हाथियों में ऐरावत और ये पारिजात वृक्ष, ये उच्च श्रवा घोड़ा, सब आपने इंद्र से छीन लिया। हंसों से जुता हुआ ये विमान आपके आंगन में शोभा दे रहा है। सब विमानों में रत्नभूत विमान है, तो पहले ब्रह्मा जी के पास था, उसके बाद अब आपके पास आया है। महापद्म नाम की निधि आप कुबेर से छीन कर लाए थे, वो आपके पास है। समुद्र ने आपको किंजलकिनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं है, वो आपके पास है। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र आपके पास है, जो पहले कभी प्रजापति के पास रहता था। मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम की शक्ति भी आपने छीन ली है, वरुण का पाश आपके पास है। इस प्रकार सारे रत्न आप दोनों भाइयों के पास है, अधिकार में है। अग्नि ने तो स्वतः शुद्ध किए हुए दो वस्त्र आपकी सेवा में उपस्थित कर दिए हैं। इतना सब कुछ होते हुए अब आप इस स्त्री को क्यों नहीं ले लेते हो? ये स्त्री जब आपके इन वस्तुओं के बीच में रहेगी तो इन वस्तुओं की और शोभा होगी, आपकी भी शोभा होगी, इसलिए आप उस स्त्री को अपने अधिकार में ले लीजिए। चंडमुंड का ये वचन सुन करके शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, सुग्रीव तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वो शीघ्र यहां आ जाए। उसको बताना मेरे पास कैसी कैसी चीजें हैं, मेरे यहां रहने पर ये सब चीजें तुम्हारी हो जाएगी। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेशों में जहां देवी मौजूद थी वहां गया, जाकर देवी के दर्शन किए और बड़े विनीत शब्दों में कहा, श्लक्षणम मधुरया गिरा। दूत ने कहा, देवी दैत्येश्वर शंभु त्रैलोक के परमेश्वर है। हे देवी, दैत्यराज शुंभ है, वो सब देवताओं में, सब लोकों में अभी परमेश्वर है, उनके समान कोई नहीं है। बल में, पराक्रम में, हर दृष्टि से उनके समान कोई नहीं है। मैं उनका भेजा हुआ दूत हूं और आपके पास आया हूं। उनकी आज्ञा तो देवता लोग भी सिर झुका करके मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन कर नहीं सकता। और पहले देवताओं को बड़ा अभिमान था, सब देवताओं को उन्होंने परास्त कर दिया है, उनके पास किसी वस्तु की कमी नहीं है, केवल एक आपकी कमी है। इसलिए उन्होंने आपके लिए संदेश दिया है, उसे आप बड़े सावधानी से सुने। उन्होंने कहा है, संपूर्ण त्रिलोकी की मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरे आज्ञा के अधीन रहते हैं, संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं पृथक पृथक कर भोगता हूं, जो भी यज्ञ का फल होता है वो मेरे सामने आता है, देवता नहीं ले सकते। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में सबसे श्रेष्ठ है, मैंने छीन लिया। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च श्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों में पड़ करके नम्र भाव से अर्पित कर दिया है। हे सुंदरी, इसके सिवा और भी बहुत से पदार्थ देवताओं से, गंधर्वों से, नागपाशों से मैंने छीन कर मेरे अधिकार में ले लिया है। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः इन इतने रत्नों में एक तुम भी रत्न हो, तुम्हें मेरे पास ही आने से शोभा होगी कि रत्नों का उपभोग करने वाले हम हैं। हे सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई पराक्रम की, निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण तुम कर लोगे तो तुम्हारे पास अतुलनीय ऐश्वर्य संपत्ति प्राप्त होगी। बुद्धि के द्वारा ठीक ढंग से विचार कर लो, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। नम्रता से सुनो और चाहे आप मेरी आज्ञा मान करके इसका पालन करो। जो भी आपको करना ही करना ही होगा। इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरांतस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत। हो देवी मुस्कुराई और वो उनको मन ही मन में मुस्कुराई और यूं उपेक्षा दृष्टि से देख करके कहा, सत्यम उत्तम, वाह वाह वाह, तुमने तो बहुत अच्छी बात कही। नात्र मिथ्या किंचित त्वयोदितम, तुमने तो कोई भी बात झूठी नहीं की, सब बात बड़ी श्रेष्ठ है। आहो त्रिलोकी के अधिपति शंभु और निशंभु, जैसा तुमने बताया वे तो वैसे ही है, पर एक बात है, मैंने अपने मन में कुछ प्रतिज्ञा कर ली है, इसलिए उस प्रतिज्ञा को कैसे मैं झूठा करूं। मैंने अपने अल्प बुद्धि के कारण से ये प्रतिज्ञा कर रखी है, वो सुन लो तुम। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा और जो संसार में मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए हे दूत, तुम जाओ, शुंभ अथवा निशुंभ उन दोनों को तुम कहो कि आप स्वयं ही देवी के पास पधारो और उनको जीत करके और पानी ग्रहण कर लो। अब इसमें देरी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जाकर बोल दो। दूत को बड़ा क्रोध आया। दूत ने कहा, देवी इतना तुमको घमंड है, तुम एक अबलाई तो हो, तुम्हारे पास इतना बल, देखो मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के समान, शुंभ और निशुंभ के समान योद्धा हो, युद्ध में उनके सामने खड़ा हो सके। हे देवी, अन्य देवताओं के सामने सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहरोगी? अन्य देवतियों के सामने भी ये देवता ठहर नहीं सकते, तुम कैसे ठहर सकोगी? जिन शुंभ आदि देवतियों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं रहे, तुम कैसे उनके साथ युद्ध करोगी? ऐसी मूर्खता भरी बातें नहीं करनी चाहिए, घमंड से दूर रहना चाहिए। तुम मेरे कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ, तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी और जैसा तुमने कहा है, यदि वे क्रोध में भरकर यहां आएंगे और तुम्हारे केश पकड़ करके तुमको घसीटेंगे, उस समय तुम्हारी क्या प्रतिष्ठा रहेगी? सोच लो देवी। देवी ने कहा हाँ दैत्यराज, हाँ दैत्यराज के दूत, मेरी बात और सुनो। तुम्हारा कहना बहुत ठीक है, शुंभ बहुत बलवान है, निशुंभ भी बहुत बलवान है, पर मैं क्या करूं? मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली, बिना सोचे समझे कर ली, पर प्रतिज्ञा तो कर ली। उस समय मेरे प्रतिज्ञा में शुंभ और निशुंभ थे ही नहीं, मुझे क्या मालूम शुंभ और निशुंभ इतने बड़े शूरवीर होंगे, तो मैं प्रतिज्ञा नहीं करती। अब कर ली सो तो कर ली, तुम जाकर उनसे बोल दो और आदर पूर्वक कहना, फिर उसके बाद जो भी उचित पड़े वैसा हमारे साथ युद्ध कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, और आगे उनकी मर्जी है। देवी का यह कथन सुनकर के दूत को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि हमारी बात को तुम हल्केपन से ले रही हो, अभी देखता हूं। ऐसी धमकी दे करके वह दैत्यराज के पास सब समाचार सुनाने के लिए वहां से प्रस्थान कर गया। जब शुंभ ने ये सब समाचार सुने दूत से, तो वो कुपित हो गया। अच्छा, वो सीधी सीधी सरल सरल भाषा में हमको चुनौती देती है, अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करेगी या प्राणों की रक्षा करेगी, देखते हैं। मैं क्या जाऊं, मेरा सेनापति जाएगा। सेनापति धूम्रलोचन, हां महाराज, जाओ अपनी सेना लेकर जाओ और दुष्टा के केश को पकड़ करके घसीटते हुए जबरदस्ती आ ले आओ। पर याद रखना, हमें ऐसा लगता है वो देवी जिस प्रकार से बोलती है उसकी रक्षा में कोई छिपे हुए जरूर होंगे, इसलिए अपनी सेना लेकर जाओ, सावधानी से जाओ। कौन होंगे रक्षा में? देवता तो मेरे नाम से डरते हैं। कौन है? यक्ष? नहीं, गंधर्व? नहीं नहीं, और भी क्या पता कोई हो। किसी की परवाह मत करना, जो भी रक्षा में आए उन्हें मारते चले जाना और देवी को घसीट करके यहां लाना। देवी ने मुझे वहां आने के लिए कहा है, देवी का इतना बल, इतना अभिमान, मैं शुंभ त्रिलोकी का राजा उसके पास जाऊं? नहीं, उसको बड़े अपमानित ढंग से यहां लाना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं शुंभ की आज्ञा मिल गई और धूम्रलोचन दैत्य था वो 60,000 असुरों की सेना को लेकर वहां से चल दिया। अब वो सेना चल रही है और वो वहां पर्वत पर ही है। नारायण नारायण।